है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यहुन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मसी महिमा, मसी महिमा हो, तेरी महिमा हो, मसी महिमा। हो घर में तेरी महिमा, हो बाहर तेरी महिमा, हो घर में ही महिमा हो प्रचार से महिमा ही महिमा मसी महिमा हो महिमा ही महिमा मसी महिमा हो सुबह को हो दोपहर को हो संध्या को सारी रात्रि को मसी महिमा हो संध्या को सारी रात्रि को हो महिमा हो
प्रिय मित्र, प्रभुषु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय मित्र और परिवार के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, जो बाइबल की अंतिम पुस्तक है। पिछले अध्ययन में हम सब अध्याय 18 से अध्ययन को कर रहे थे, जहां पर हमने देखा बेबीलोन के नाश होने के बारे में। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए देखेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय उसके 6 पद से। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस घड़ी विशेष करके हमारी प्रार्थना है हमारे उन श्रोता भाई बहनों के लिए जो अलग अलग स्थानों पर रेडियो के निकट बैठ करके आपके वचन को सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम विनती करते हैं प्रत्येक के जीवन के लिए कि आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से जो बातें सुनते हैं समझ सकें, सीख सकें, जीवन में ग्रहण करने पाएं। यदि कोई बीमार है, निराश है, चिंता और तनाव में है, परेशानी में और दबाव में है, प्रभु जी आप उनकी भी सुधि लें। आज के वचन से हम सबों को आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, तो आइए आप मेरे साथ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय उसके 6 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो, और उसके कामों के अनुसार उसे दो गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए दो गुना भर दो। मेरे प्रियो, यह ओबद्याह 15 के अनुसार न्याय है। पाप का घड़ा ऊपर तक भर गया है और जब उसमें अंतिम बूंद गिरती है तब वह पाप करने वालों के होठों से लगाया जाता है। यह न्याय है। जी हां मेरे मित्रों, आप भजन संहिता 137 को अवश्य पढ़ें। परमेश्वर अपने कामों में न्यायी एवं धर्मी है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 उसके 7 पद में आगे लिखा हुआ है, जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूं, विधवा नहीं, और शोक में कभी ना पड़ूंगी। देखिए, बेबीलोन अपनी समृद्धि के कारण परमेश्वर के दंड को नहीं देख पा रहा था। वहां शेयर बाजार गर्म था और लोग दंड के आने तक लाभ कमा रहे थे। भोग विलास, हठ, घमंड, पाप और भ्रम आदि उस अभक्त नगर के लक्षण थे। वे आशावादी तो थे और विश्व शांति की बाट जोह रहे थे, केवल विषाद के भविष्यद्वक्ता चेतावनी की पुकार करते थे, जिन्हें जनता पागल कहती थी, जैसे नूह। नूह ने चेतावनी दी लेकिन लोगों ने उसे पागल समझा, परंतु अंत में उन्हें हानि उठानी पड़ी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय उसके 8 पद में आगे लिखा है, इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। यहां आकस्मिक विनाश की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। उसका दुख ऐसा बड़ा होगा कि विलाप को महामारी की तुलना दी गई है, अर्थात घर घर में विलाप होगा, अकाल पड़ेगा और बड़ी संख्या में लोग मरेंगे, आग से उसका विनाश हो जाएगा। मृत्यु, विलाप और अकाल, ये तीन घुड़सवार हैं जो बेबीलोन के साथ कठोरता का व्यवहार करते हैं। यह विनाश समग्र और अंतिम होगा। धर्मशास्त्र में यह नगर महत्व में प्रथम है, परंतु इसका लंबा पापी रंग बिरंगा इतिहास अब समाप्त होता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे दंड दिया है। लिखा है, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है, उन नगर का विनाश करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा सामर्थी है। मेरे विचार में ऐसा तब होगा जब प्रभु यीशु पुनः आएगा। देखिए, यशाया की भविष्यवाणी में लिखा है, यशाया नबी की पुस्तक 63 अध्याय उसके 1-4 पद में, यह कौन है जो एदोम देश के बोसरा नगर से बैजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है? यह मैं ही हूं जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूं। तेरा पहरावा क्यों लाल है? क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हौद में दाख रौंदे वाले के समान है? मैंने तो अकेले ही हौद में दाखें रौंदी है, और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हां, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलकर उन्हें लताड़ा। उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं, इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया है, क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। पुनः आगमन के समय प्रभु यीशु एदोम की ओर से आता देखा गया है, जिसके वस्त्रों पर लहू के दाग हैं। मेरा अपना विचार है कि वह बेबीलोन से आएगा, क्योंकि वह उस दुष्ट नगर को दंड देगा। अग्रिम अध्यायों में हम प्रभु यीशु के पुनः आगमन के विषय में देखेंगे। इसके बाद हम इस महान केंद्र के विनाश के प्रति संसार की प्रतिक्रिया को देखेंगे। उसके अंतिम संस्कार के लिए वहां कौन होगा? संपूर्ण संसार को उसके विनाश का दुख होगा, परंतु स्वर्ग में आनंद की लहर होगी। ये दो परस्पर विरोधी विचार हैं। एक जनसमूह के लिए यह बुरा होगा, परंतु दूसरे जनसमूह के लिए यह अच्छा होगा। मेरे मित्रों, हम आगे देखते हैं बेबीलोन के विनाश के कारण संसार में शोक का वातावरण। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय उसके 9-10 पद में लिखा है, पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया है। मेरे प्रियो, उस युग में बेबीलोन संसार पर प्रभुता करेगा। उसका राज्य विश्वव्यापी होगा। ख्रिस्त विरोधी की राजधानी बेबीलोन होगी और वह पहला विश्वव्यापी निरंकुश शासक होगा। संसार एक भयानक स्थान हो जाएगा। इस युग में संपूर्ण व्यवस्था बेबीलोन में केंद्रित होगी। उस समय शेयर बाजार बेबीलोन में होगा। पेरिस की अपेक्षा बेबीलोन जीवन शैली तैयार करेगा। जो कुछ बेबीलोन में सफल हो गया, वह संपूर्ण विश्व में सफल माना जाएगा। उस नगर में सब कुछ परमेश्वर विरोधी होगा और ख्रिस्त विरोधी में केंद्रित होगा। मेरे प्रियो, कोई स्वप्न में भी नहीं सोचेगा कि ऐसे महान नगर को दंड दिया जाएगा, परंतु सूर्यास्त होते होते बेबीलोन जलता हुआ खंडहर हो जाएगा। यह समाचार सुनकर संसार आश्चर्यचकित हो जाएगा और विलाप आरंभ हो जाएगा। बेबीलोन के पतन पर संपूर्ण विश्व चित्कार मार करके रोएगा। मेरे विचार में तो यदि आप चांद पर हो तो भी आपको अपने एयरफोन बंद करना होगा, क्योंकि शोर ऐसा कठोर होगा कि आपके कानों को भेद देगी। मेरे प्रियो, अध्याय 17 में हमने देखा था कि पृथ्वी के सब राजा धार्मिक बेबीलोन से घृणा करेंगे और ख्रिस्त विरोधी अपनी पूजा करवाने के लिए धार्मिक बेबीलोन को नष्ट कर देगा, क्योंकि वह अपना प्रतिस्पर्धा किसी को नहीं देगा और वह नहीं देख सकता है कि कोई उससे आगे बढ़े। पृथ्वी के सब राजा उसके विनाश में एकजुट होंगे। इसके विपरीत यहां अध्याय 18 में हम देखते हैं कि पृथ्वी के राजाओं को व्यापारिक बेबीलोन से लगाव होगा, क्योंकि उनकी तिजोरियां वह भरेगा। उनके संबंधों को यहां व्यभिचार कहा गया है और सच में उनके राजनीतिक संबंधों के लिए इससे अच्छा शब्द दूसरा नहीं है। उस समय सब धनवान बेबीलोन में होंगे, वे संसार के सब बड़े बड़े निगमों के प्रतिनिधि होंगे, परंतु वे बेबीलोन से ऐसे भागेंगे जैसे चूहे डूबते हुए जहाज से भागते हैं। उनका विलाप दर्दनाक एवं घृणित होगा। वे प्रशंसा भरा गुणगान गाएंगे, परंतु उनके शोक में निराशा होगी। उन्हें उस नगर के विनाश पर आश्चर्यचकित होना होगा जिसे उन्होंने लोह नगर सोचा था, एक ही घंटे में विनाश आ जाएगा। इससे हमें परमाणु बम के विनाश का स्मरण आता है। यह एक भयानक दृश्य का प्रस्तुतीकरण है। यह विनाशकारी दंड का अंतिम अग्निकांड होगा, जिसके साथ ही प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए आएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय उसके 11 से 17 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल न लेगा, अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती और मलमल और बैजनी, रेशमी और लाल रंग के कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर की सब भांति की वस्तुएं और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय बैल, भेड़ बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्यों के प्राण, अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे, और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई हैं और वे फिर कदापि न मिलेंगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कलपते हुए कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जो मलमल और बैजनी और लाल रंग के कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी भर में ही उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया। मेरे प्रियो, इन पदों को पढ़कर ऐसा नहीं लगता कि हम किसी महानगर के बाजार में घूम रहे हैं। आज हम यह सब वस्तुएं दुकानों के शोकेस में देखते हैं। ये एक समृद्ध समाज का उत्पादन है और योहना के युग में ये सब रोमी साम्राज्य के लिए उपलब्ध था। बेबीलोन सुख सुविधा की इन सब वस्तुओं को आवश्यकता की वस्तुएं बनाएगा, जैसा आज हम इन सब वस्तुओं के बिना जीवन को अधूरा मानते हैं। इस सूची में सूती वस्त्र या चोगा नहीं है। उस युग में नहाने के लिए टब पैसे वालों का ठाट समझा जाता था। साधारण मनुष्य के भाग्य में वह नहीं था, परंतु आज होटलों में यह सब है। हम सुख विलास के युग में वास करते हैं, जिन्हें हम आवश्यकता की वस्तुएं कहते हैं। वे वास्तव में सुख विलास की सामग्री हैं। मेरे प्रियो, आइए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल ना लेगा, अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती और मलमल और बैजनी, रेशमी और लाल रंग के कपड़े। मुद्रा स्फीति की बात करें तो यहां देखने को मिलती है। जी हां, अब उनके माल का ग्राहक नहीं है। बेबीलोन में सोना, चांदी, रत्न और मोती सब कुछ खरीदा जा सकता है। यह आभूषणों की दुकान है। अब हम आभूषणों की दुकान से आगे बढ़ते हैं तो कपड़ों की दुकान आती है, जहां महंगे से महंगा कपड़ा है। मलमल, रेशम, राजसी वस्त्र आदि सब यहां पर है। इसके बाद अगली दुकान में महंगे से महंगे उपहार रखे गए हैं, जैसे चंदन की लकड़ी, हाथी दांत, पीतल, लोहा, संगमरमर आदि से बनी वस्तुएं, हर प्रकार की सुगंधित काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर की सब भांति की वस्तुएं। अगली दुकान मसालों की और सौंदर्य प्रसाधन के सामान की है, और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, प्रतिदिन 24 घंटे उपयोग की वस्तुएं। हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहां शराब भी है, तो केक आदि भी है। मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, ये धनवानों के खान पान की वस्तुएं हैं। बेबीलोन के पतन तक धनवान अच्छी अच्छी वस्तुएं खाएंगे। तब आगे कहता है, गाय, बैल, भेड़, बकरियां। अगली दुकान मांसाहारी की है, जहां हर प्रकार का मांसाहारी भोजन है। ये सब वस्तुएं विलासिता में जी रहे मनुष्यों के लिए है। यहां मनुष्य और उसकी आत्मा भी बिक रही है। आगे लिखा है, घोड़े, रथ और दास और मनुष्यों के प्राण। आज बड़े बड़े निगमों में अच्छा वेतन देकर मनुष्य को दास बनाया जाता है। आज अनेक स्त्रियां अपना विवेक बेच रही हैं। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उनके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कलपते हुए कहेंगे, हाय हाय। मूल भाषा यूनानी में यह शब्द चित्कार की आवाज है। विश्व के व्यापारी अपने अपने टीवी के चैनलों में सामने बैठे हाय हाय कर रहे होंगे, क्योंकि एक ही घंटे में उस नगर का सारा धन ध्वंस हो जाएगा। मेरे मित्रों, हम नए नियम के समान घटना पुराने नियम में देखते हैं। क्या इसके सदृश पुराने नियम में कुछ घटा है? जी हां, यहेजकेल ने फिनेके की राजधानी सोर के लिए भविष्यवाणी की थी। प्राचीन संसार में सोर नगर यहां व्यक्त बेबीलोन के सदृश ही था। आप पढ़ सकते हैं यहेजकेल नबी की पुस्तक उसके 26 और 27 अध्याय को। आगे हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय उसके 17 के बी पार्ट और 17 से 19 पद। लिखा हुआ है, हर एक माझी और यात्री और मल्लाह और जितने समुद्र से कमाते हैं, सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है? और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी भर में ही उजड़ गया। मेरे मित्रों, विलाप करने वालों का तीसरा वर्ग है परिवहन वालों का, क्योंकि बेबीलोन में सामान पहुंचाकर वे धनवान बन गए थे। ठीक वैसे ही जैसे फिनेके वासी प्राचीन संसार में यातायात का प्रमुख साधन थे, अब व्यापार ठप हो गया है, अतः वे दुख मना रहे हैं। देखते ही देखते सब कुछ ध्वंस हो गया है। वे भी इस आकस्मिक विनाश के कारण चकित हैं। यहां हमारे लिए शिक्षा है, हम संसार की विलासिता को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? क्या हम इसे यथार्थ में देखते हैं? क्या हम इसे मन में उतारे बिना उपयोग कर रहे हैं? यदि आपकी ये आवश्यकताएं अकस्मात ही ध्वंस हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? मेरे प्रियो, हम आत्मिकता और आत्मिक बातों की चर्चा करते हैं। हमारी मसीह संस्थाओं में भी विश्वासियों से अधिकाधिक दान लेने की महान लालसा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमने संसार को बहुत अधिक महत्व दिया है। यह संसार नाश होने जा रहा है। आपकी उंगलियां पर गिनी जाने वाली वस्तुएं भी नाश हो जाएंगी। विश्व के बड़े बड़े नगर विनाश की ओर अग्रसर हैं। परमेश्वर उन्हें दंड देगा। परंतु प्रश्न यह है, संसार को और उसकी वस्तुओं को ध्वंस होते देखकर क्या आपको दुख होगा या क्या आपका मन स्वर्ग में लगा है, मसीह में लगा है? यही एक मुख्य अंतर है कि आपका मन कहाँ है, संसार में है या स्वर्ग में है। मेरे मित्रों, चुनाव आपको करना है, क्योंकि निश्चय ही संसार का नाश होने वाला है। यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में एक अहम निर्णय को लिया है, और मुझे विश्वास है कि आपने आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, नया हौसला मैंने जीने का पाया, जीवन सजाया सजाया। जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, नया हौसला मैंने जीने का पाया, जीवन सजाया सजाया। जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, मेरी